तत्वार्थ सूत्र लेक्चर नंबर 12 स्वामी द्वारा लिखित जो तत्वार सूत्र है उसके पहले अध्याय के हम सातवें सूत्र को देख रहे हैं। ये सातवें सूत्र में जो बातें बताई हैं, छह नाम दिए हैं और वो छह नाम इसलिए दिए हैं कि जो कोई बातें शास्त्रों में लिखी गई है, मान लो सात तत्व हैं, छह द्रव्य हैं या सम्यक दर्शन है, तो इनको जानने के लिए, सही रूप से जानने के लिए ये उपाय है। लेकिन कैसे उपाय है? अप्रमुख यानी प्रधान नहीं है। है तो सही, तो प्रधान कौन से थे? हाँ, कौन बताएगा? सुशीला बेन, आप कल ठीक है? प्रधान उपाय कौन से बताए थे? हाँ बोलो बेन। प्रमाण, नय और निक्षेप।
प्रमाण,
नय और निक्षेप भी
हो। निक्षेप तो वस्त्र में हो जाता।
तो ये दोनों बातें जो है, प्रमाण और नय से ज्ञान होता है, यानी वस्तु का यथार्थ ज्ञान होता है, जानना होता है। तो हमने कल छह नाम देखे थे, किसको किसको याद है? बंदा तुमको है? शाबाश, बोलो बोलो। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। तुम क्या बोलते? विधि विधि क्या? मैं बोले विधि की दृष्टि है। हाँ अरविंद भाई, आप बता पाएंगे छह नाम?
निक्षेप
नहीं,
निर्देश
कोई बात,
स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान।
बहुत अच्छा। अभी किसको याद नहीं है? अच्छा करो।
निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान।
बहुत अच्छा, ये सबको याद हो गए। अभी इसका नाम तो हमने याद किए हैं, अभी इसका अर्थ भी देखेंगे। ये क्या होता है? कोई भी वस्तु है तो उसके स्वरूप का कथन करेंगे तो निर्देश हुआ। यानी ये पेंसिल है तो पेंसिल है, अभी ये तो बॉल पेन है, पेंसिल है तो ये लकड़ी से बनी है, उसके अंदर शीश है वगैरह वगैरह जो कुछ बनेंगे, ये फला कंपनी ने बनाया है, तो ये उसके बारे में बात बताना, ये तो लौकिक की बात है। अभी ये पुद्गल द्रव्य है, इसमें स्पर्श है, रस है, गंध है, इसमें आनंद परमाणु है वगैरह, ये कहना ये अलग बात है। तो यहाँ क्या कह रहे, देखो निर्देश, पेज नंबर है मेरे 35, आपका देख लेना
30 नंबर।
हाँ, निर्देश का अर्थ उन्होंने क्या बताया? वस्तु स्वरूप के कथन को, यानी निर्देश का अर्थ कथन, लेकिन काय का कथन है? इधर उधर का नहीं, वस्तु का जैसा स्वरूप है उसका कथन। अभी सम्यक दर्शन का जैसा स्वरूप है वह जो कथन है वो सम्यक दर्शन के लिए निर्देश है। स्वामित्व यानी वस्तु के अधिकारीपन को स्वामित्व कहते हैं। अभी हम ज्ञान गुण के बारे में जानना चाहेंगे तो ज्ञान गुण का स्वामी पना किसके पास है? तो यानी समझ में पना, स्वामित्व, तो स्वामी पना, उसका अधिकारी कौन है? शंकर जी क्या कहा, देखो स्वामित्व यानी क्या है, वस्तु के अधिकारीपन को स्वामित्व कहते हैं। तीसरी बात क्या कह रहे हैं, साधन यानी वस्तु की उत्पत्ति के कारण को साधन कहते हैं। ये तो हम यहाँ तो वस्तु कैसे तैयार हुई, अभी द्रव्य को ऐसा भी कह सकते कि वो उत्पन्न ही नहीं होता है, अनादि है, तो स्वयं वो ऐसा कहेंगे तो उसका साधन भी हो सके। अधिकरण यानी वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं, यानी ये जैसा टेबल पे ये क्या बोलते हैं आप इसको, स्टैंड, तो स्टैंड के आधार से शास्त्र है ना। हाँ भाई, तो हाँ बहुत अच्छा, प्रत्येक द्रव्य में अपने स्वयं के षटकारक होते हैं, नाम जानते हैं षटकारक के, हाँ दिव्य बिन कर्ता कर्म करण यानी साधन न, करण संप्रदान अपादान और अधिकरण। अधिकरण तो प्रत्येक द्रव्य अपने अधिकरण से अपने आधार से रहता है, तो ये विश्व किसके आधार से है, स्वयं के आधार से। देखो लोग क्या मानते हैं, अन्य अन्य कुछ बातें मानते हैं कि हरक्यूलिस ने उसको उठाया है, कोई कहता है शेषनाग के ऊपर है, कोई कहते हैं कछुआ के ऊपर है, और ऐसे ऐसे अलग अलग कोई कोई मान्यताएं हैं। लेकिन जब हम वस्तु स्वरूप को जानेंगे तो हम नक्की करेंगे कि प्रत्येक वस्तु अपने आधार से है। अब ये जो पेन है तो ये डब्बे के आधार से है ऐसा हम कहेंगे, लेकिन है नहीं, तो वह वस्तु का यथार्थ ज्ञान हुआ, नहीं तो हम ऐसा इसको परावलंबी मानेंगे। प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है और अपने स्वयं से परिणमने योग्य है, स्वक्षेत्र में रहती है, पर क्षेत्र में उसका अभाव है, तो पर के आधार से रही है ऐसा मानना खोटा हो गया कि नहीं, ये बात चल रही है। कहते हैं अधिकरण यानी वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं। स्थिति वस्तु के काल की मर्यादा को स्थिति कहते हैं। ये वस्तु की काल की मर्यादा कितनी है भाई, नितिन भाई आप जानते हैं, कोई भी वस्तु लो त्रिकाल, तो उसको काल में कैसा गिनेंगे हम, अनादि अनंत। स्थिति हो गई, अब आखिर क्या है, विधान यानी वस्तु के भेदों को विधान कहते हैं। अब इसका इन डिटेल अभी बताएंगे आपने को,
वस्तु ने यहाँ जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं उस विषय के बारे में सब, हो सकता है पर्याय, हो सकता है जो कुछ है, इसलिए उसमें ये सभी बातें घटित करके फिर उसको जानना है, जैसे सम्यक दर्शन को जानना है या शुद्ध ज्ञान को जानना है या सामयिक को जानना है, ध्यान को जानना है, तो ध्यान का स्वरूप बताना उसका निर्देश होगा, तो ध्यान के स्वामी कौन है, किसको ध्यान होता है वो बताएंगे, तो उसका साधन क्या, अधिकरण क्या, स्थिति कितने काल तक रहेगी, ये सब, ये किसी भी एक विषय पर ये सब घटित करना, उसको यहाँ वस्तु कहा, यानी वो वस्तु यानी द्रव्य या ऐसा ही नहीं लेना, किसी भी विषय में हम उस विषय को जानना चाहते हैं तो प्रमाण और नए से जानना है, वो तो मुख्य उसके उपाय बताए, और उसको जानने के और क्या क्या उपाय है, तो ये निर्देश स्वामी तो साधन वगैरह जो हमने पीछे देखे हैं, उन सभी अपेक्षाओं से वस्तु को जानना, वस्तु को जानने में जिस किसी पर्याय की या जिस किसी की बात कर रहे हैं उसको जानना।
अभी यहाँ ऊपर अपने को बताया सम्यक दर्शन आदि जानने के बारे में, निश्चय सम्यक दर्शन, तो यहाँ ये अभी ये सारे छह ही बातें, देखो उपरोक्त छह प्रकार से सम्यक दर्शन का वर्णन निम्न प्रकार किया जाता है, यानी अब यहाँ पर ये सम्यक दर्शन पर ये छह बातें घटित करेंगे। निर्देश जीवादि सात तत्वों की यथार्थ श्रद्धा पूर्वक निज शुद्धात्मा का प्रतिभास, प्रतिभास का अर्थ क्या क्या है, यहाँ विश्वास, प्रतीति को निर्देश कहते हैं। ये दूसरा सूत्र हमने
सम्यक दर्शन का निर्देश हुआ, सम्यक दर्शन पर ये छह घटित कर रहे हैं, यानी सम्यक दर्शन का स्वरूप पहले बता दिया, कथन किया सत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन,
ये दूसरे
बताए
पहले तो हमको बताया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, वहां भी सम्यक दर्शन बात बताई, अभी दूसरे में भी बताया कि तत्वात श्रद्धानम सम्यक दर्शन,
वहां तो मोक्ष मार्ग की बात है, मोक्ष मार्ग का वो निर्देश हुआ, कौन सा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष मार्ग का निर्देश है, सम्यक दर्शन का निर्देश यानी स्वरूप क्या है तो तत्वात श्रद्धानम सम्यक, वो वहां पर यहाँ सम्यक दर्शन पर सब घटित करके लिखा है
स्वामित्व, स्वामित्व यानी सम्यक दर्शन किसको प्राप्त हो सकता है तो कहते हैं चारों गति के संगी पंचेंद्रिय भव्य जीव स्वामी होते, तीन कंडीशन बताई कौन कौन सी, पहले में पहले कोई भी गति चलेगी ऐसी कोई विशिष्ट गति की बात नहीं है, लेकिन मूल में क्या होना चाहिए संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए हाँ, और दूसरी बात भव्य जीव होना चाहिए, यानी संगी पंचेंद्रिय है और अभव है तो उसको नहीं बोलना, अभी साधन तीसरा पॉइंट, साधन के भी दो भेद है, एक अंतरंग साधन और एक बाह्य साधन, अंतरंग साधन यानी इसको अंतरंग कारण का, तो स्वशुद्धात्मा के त्रिकाली ज्ञायक भाव यानी पारिणामिक भाव का आश्रय है और बाह्य कारण भिन्न प्रकार के होते हैं, भिन्न एक ही बार, अब तीरेंच और मनुष्य गति में बाह्य कारण कौन कौन से हो सकेंगे इसकी यहां बात हमें बता दें, कह रहे हैं तीरेंच और मनुष्य गति में जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जिनबिंब ये निमित्त होते हैं,
या कर्म को क्यों नहीं लिया, कर्म का उपशम, कर्म का
ये निमित्त उपादान की बात नहीं है, कि कारण जो है साधन जो है वो तो साधन में भी अंतरंग और बहिरंग साधन की बात चल रही है, यहाँ साधन की बात हो रही है, निमित्त होता तो अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त की बात करते और वहां अंतरंग निमित्त किसको कहना ये मैं आपसे पूछूंगा, निमित्त की जब हम बात सोचते हैं तो उसमें अंतरंग कारण किसको कहना,
जो माने होता ही है
यानी जभी जभी ये तो आप उदाहरण दे रहे हैं, अभी आप तो केवल सम्यक दर्शन की बात कह रहे हैं तो आपको हम समझे, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं अंतरंग निमित्त यानी कोई भी कार्य होता है उस समय वह निमित्त अवश्य होता है, नियम पूर्वक होता है तो उसको अंतरंग निमित्त कहेंगे,
जो जो कार्य होगा कहीं पर भी होगा किसी भी
क्षेत्र में किसी भी काल में
किसी के जीवन में जो कुछ होगा, अब जैसे पूरे लोकाकाश में जीव गमन करे या पुद्गल गमन कौन निमित्त है, वो तो कर्म नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे अंतरंग निमित्त, नियम रूप निमित्त जो सब में वो पाया जाएगा उसको अंतरंग निमित्त कहते हैं, अब सम्यक दर्शन में लगाना है तो कर्मों की विशिष्ट अवस्था कि मिथ्यात्व का उदय रुक गया अनुदय हो गया, वेद सम्यक होगा या जो क्षायिक होगा या औक्षमिक होगा, और यहाँ साधन यानी जो दिखाई देते हैं उसकी बात है,
कारण जिसको हम केवल कहेंगे
उत्पत्ति क्यों होती है तो शुद्धात्मा के अवलंबन से होती है, और बाह्य में निमित्त देखेंगे तो जाति स्मरण से, यानी क्या ऐसा बना के उसने वो आत्मा का आत्मसंमुखता होगी, जाति स्मरण हुआ किसी ने जन्मबिंब देखा, उसके आगे का वो प्रोसेस तो होगा ही हर एक, यानी अपने शुद्धात्मा का अवलंबन तो हर एक में होगा ही होगा, परंतु उसके लिए बाह्य में ऐसा क्या बनाव बना, तो किसी के जाति स्मरण हुआ, किसी ने जिंदगी में देखा, किसी ने धर्म श्रवण ने उपदेश सुना, और वो सुनकर वो स्वस्थ मुख हो गया, वैसे लेना इसको।
देवगति में 12वें स्वर्ग से पहले, यानी पहले से लेकर 12वें स्वर्ग तक।
12वें स्वर्ग का नाम क्या है?
सहस्त्र।
क्या?
सहस्त्र। आप क्या पूछ रहे हैं?
11 की बात कर रहे हैं?
12
इंक्लूड।
12 स्वर्ग से पहले ऐसा बताया।
12 तक
आपने क्या लिखा है गुजराती में?
देवगति में 12वां स्वर्ग पहला।
इसमें क्या क्या है? जाति स्मरण है, धर्म श्रवण है, और जिन कल्याणक दर्शन, देववृद्धि दर्शन, ये कारण होते हैं। देखो यहाँ क्या बताते हैं, वहां पर भी जाने के बाद जाति स्मरण हो सकता है, वहां जाने के बाद धर्म श्रवण भी पॉसिबल है, क्योंकि समोषण में आ जाए तो धर्म श्रवण भी होगा, वहां कोई अन्य सम्यक दृष्टि अधिक जानकार होंगे, मुनि होके वहां गए होंगे, वो भी बता पाएंगे। और जिन कल्याणक दर्शन, यानी जो पंच कल्याणक होते हैं उसमें देव आते हैं, वह भी उनके लिए साधन हो सकता है। और मुख्य क्या है? देववृद्धि दर्शन का साधन, यानी वहां जाते हैं और ऐसा वैभव के वो स्वामी हो गए, इतना ये तो पहले मैंने कभी देखा ही नहीं था, तो ये कहां से मिला मुझे, तो फिर उसको याद आता है। अब यहां जाति स्मरण भी आएगा बीच में, इतना वैभव कहां आया, कहां से आया, तो मैंने ऐसा ऐसा किया था, तो ये एडिशनल है। और ये जिन बिंब दर्शन इतना ही बताया, यहां जिन कल्याणक दर्शन बताया, ख्याल में है ना फर्क? फर्क ख्याल में आ गया?
वो कल्याणकों में आते हैं ना।
हाँ, और इन्होंने पहले से 12वें, अब कहते 12वें स्वर्ग से 16वें स्वर्ग पर्यंत, उसमें भी जाति स्मरण, धर्म श्रवण और जिन कल्याण दर्शन कारण है। और वहां तो क्या बताया?
देववृद्धि दर्शन एक्स्ट्रा लिया।
हाँ, ये इसमें नहीं लिया। अभी 9वें ग्रह वेग में जाति स्मरण, अच्छा सॉरी 9वें ग्रह वेग में, 9वें ग्रह वेग में जाति स्मरण और धर्म श्रवण कारण होता है। नरक गति में
जिन कल्याण दर्शन क्यों नहीं लिया?
माने वो नहीं जाते,
क्यों नहीं जाते? इच्छा नहीं, जाने की गमन शक्ति तो बहुत है, पर वहाँ वो तो मतलब ऐसे कर रहे हैं कि वो तो वहाँ नीचे आने के लिए वो आते ही नहीं, वो अपनी जगह रहते हैं।
अब ये तो अभी 9वें ग्रह वेग में बातें हुई, उसके ऊपर की क्यों नहीं बात कर रही? हाँ दिव्य में 9वें ग्रह वेग के ऊपर की बात ही नहीं बताई उन्होंने, वहां सारे ही सम्य दृष्टि
में, सारे सम्य दृष्टि या तो सम्य की उत्पत्ति के कारण बताया,
साधन बताया, बहुत अच्छा। अब कहते हैं तीसरे नरक तक, नरक गति में तीसरे नरक तक क्या क्या है? तो कहते जाति स्मरण, धर्म श्रवण और दुखानुभव निमित्त होता है, यानी जैसा उनको देवों में ये वृद्धि देख के एकदम ऐसा चकाचक हो जाता है, वैसा यार ये क्या है भाई, हमको इतनी तकलीफ क्यों, क्या हमने किसका बुरा किया था, ऐसा कुछ भी सोचे। जैसा हम भी तो क्या होता है कि कभी कभी कोई बीमार पड़े, बहुत तकलीफ होती है, शारीरिक कष्ट होते हैं, वेदना होती है, तो जीव ऐसा सोचता है इस जिंदगी में तो मैंने किसी का कुछ बुरा तक नहीं किया और मेरे ही नसीब में ऐसा क्यों। वैसे वहां नरक में जाएंगे तो इतनी प्रतिकूलता होती है और उससे उनको दुख का अनुभव तीव्रतम होता है, तो उसके कारण फिर एक तो क्या है उधर अवधि कौन सा सु अवधि है ना क्यों
हो सकता है
अरे भैया अभी वो मिथ्या दृष्टि है ख्याल में है ना तो मिथ्या दृष्टि है तो उसको को अवधि होगा फिर भी अवधि ज्ञान है और लगा भाई करें कैसा क्यों क्यों फिर याद आवे जो कुछ हो अब क्या कह रहे हैं यहाँ तीन बातें बताइए जाति स्मरण और यहाँ एडिशनल क्या बात बताते हैं धर्म श्रवण यानी हमने देखा है तीसरे नरक तक जीव कौन देवगति के वहां जाते हैं और किसी उनके जानकार लोगों को जाके उपदेश देंगे अब देखो आगे क्या बताते हैं और चौथे से चश्मा बनता चौथे से सातवें नरक तक जाति स्मरण और दुखानुभव निमित्त होता है वहां उपदेश की बात नहीं की धर्म श्रवण की बात नहीं की क्योंकि वहां कोई जाता ही नहीं है तो अधिकतर तो उसको दुखानुभव ही होता होगा पता नहीं अभी उसके तरतमता मालूम नहीं है उनमें तो मतलब जाएंगे नहीं ना उधर किधर नोट उपरोक्त धर्म श्रवण सम्यक ज्ञानियों से प्राप्त होना चाहिए शंका सभी नारकी जीव विभंग ज्ञान द्वारा एक दो या तीन आदि भाव में जानते हैं उससे सभी को जाति स्मरण होता है इसलिए क्या सभी नारकी जीव सम्यक दृष्टि हो जाएंगे ऐसा शंकाकार ने शंका की है कहते हैं यानी किसी को देखो बात ऐसी होती जाति स्मरण में एक खासियत ऐसी है नारकी के बताए ना उन्होंने सभी नारकी जीव विभंग ज्ञान द्वारा एक दो या तीन मैक्सिमम तीन की बात होती है लेकिन मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता था कि वो पंचेंद्रिय से पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय ही होगा तो ये उतने काल तक चलेगा और ऐसे मेरे हिसाब से आठ भवन है ना मनुष्य के लिए
जाति स्मरण के मनुष्य ने संगी पंचेंद्रिय रहना चाहिए मनुष्य रहे ऐसे भी भीष्म देव भी जाएगा
ठीक है
अभी ये जो श्री राम हरिनाथ भगवान को नौ भाव पहले की उन्होंने जाति स्मरण
लेकिन नारकी के तीन भाव की बात बताइए लेकिन
आदी
आगे आदि कहाँ है भाई
तीन आदि
तो जाति स्मरण तो अलग चीज है विभोध ज्ञान अलग
वो अलग
उन्होंने ये बताया विभंग ज्ञान द्वारा यानी विभंग ज्ञान से एक दो तीन आदि भाव जानते हैं कि आदि में नक्की कितना है यहाँ तो बताया नहीं है तो उनका कह दे उनको तो जाति स्मरण होता है तो उनको तो सम्यक तो होना ही चाहिए लेकिन वो गलत सोच रहा है क्योंकि निमित्त से या साधन से कार्य नहीं होता यहाँ सामान्यता भवस्मरण द्वारा सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती किंतु पूर्व भव में धर्म बुद्धि से किए हुए अनुष्ठान विपरीत विफल थे ऐसी प्रतीति प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्ति का कारण होती है क्या कहा पूर्व भव में धर्म बुद्धि से किए हुए अनुष्ठान कैसे थे विपरीत थे खोटा कुछ किया है ऐसी प्रतीति प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्ति का कारण होती है प्रथम यानी क्या है क्या ऑप्शन इसी बात को ध्यान में रखकर भवस्मरण को सम्यक्त्व की उत्पत्ति का कारण कहा है नारकी जीवों के पूर्व भू का स्मरण होने पर भी बहुतों के उपरोक्त उपयोग का अभाव होता है उपरोक्त उपयोग में यानी क्या अपने स्वरूप में लीनता का ऊपर कहे गए प्रकार का जाति स्मरण प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्ति का कारण होता है शंका नरक में ऋषियों साधुओं का गमन नहीं होता फिर वहां नारकी जीवों के धर्मश्रवण किस तरह संभव हो सकता है अपने पूर्वों में संबंधियों के धर्म उत्पन्न कराने में प्रवृत्त और सभी बाधाओं से रहित सम्यक दृष्टि देवों का वहां तीसरे नरक पर्यंत गमन होता है। ये जरा सी विचित्रता ऐसी लगती है कि जिस रावण ने सीता जी का हरण किया वही सीता उनको उपदेश देने के लिए नरक में जाए। सीता है ना, सीता का जीव, और भविष्य में रावण तीर्थंकर होंगे और आप गणधर होंगे।
अभी कुछ मौन के बाद
भविष्य में कैसा मतलब, तो ये क्या बताना चाहते हैं? मैं तो दूसरी बात बताना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जब यह जीव पर्याय पर नजर रखता है तो उसके राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। वो बिचारी सीता अबला स्त्री और वो त्रिखंडी, यानी हमने किस पर नजर रखी है? पर्याय पर। तो हमको उसके प्रति राग और उसके प्रति द्वेष, और हम वो जीव है, अनंत गुणों का पिंड है, तो कौन से राग द्वेष की उत्पत्ति होनी है? सभी है। यहाँ क्या बता रहे हैं देखें, ये लास्ट शंका देखेंगे। यदि वेदना का अनुभव सम्यक्त्व की उत्पत्ति का कारण है तो सभी नारकियों को सम्यक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि सभी नारकियों के वेदना का अनुभव है। वेदना सामान्य सम्यक्त्व की उत्पत्ति का कारण नहीं है, यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा था। किंतु जिन जीवों के ऐसा उपयोग होता है कि मिथ्यात्व के कारण इस वेदना की उत्पत्ति हुई है, उन जीवों के वेदना सम्यक्त्व की उत्पत्ति का कारण होता है, दूसरे जीवों के वेदना सम्यक्त्व की उत्पत्ति का कारण नहीं होता है। क्या कहते, किसी अन्य जीव को बहुत वेदना हो रही है तो उसकी वेदना देख के अपने को सम्यक्त्व नहीं होगा, ऐसा कहते वहां पर। ये कोटेशन दिया है श्री धवला पुस्तक 6 पृष्ठ 422-423। अब शंका, जिनबिंब दर्शन प्रथम सम्यक तो उत्पत्ति का कारण कैसे होता है? जिनबिंब से जो जीव अपने संस्कार को शुद्ध आत्मोन्मुख करे उनके निधत्त निकाचित रूप मिथ्यात्वादी कर्म समूहों का भी क्षय देखा जाता है, और इसी कारण जिनबिंब दर्शन प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्ति का कारण होता है। इसको भी श्री धवला पुस्तक 6 पेज नंबर 427-428 ऐसा दिया। शास्त्र प्रश्न, शास्त्र में जिनबिंब दर्शन से यानी जिन प्रतिमा के दर्शन से सम्यक दर्शन होना बताया है, अतः दर्शन करने वाले सभी को यह फल होना चाहिए, किंतु सभी को यह फल क्यों नहीं होता है? उत्तर, जिसने सर्वज्ञ की सत्ता का निर्णय किया है उसके जिन प्रतिमा के दर्शन से सम्यक दर्शन रूप फल होता है, दूसरों को नहीं। ये क्या बात बताना चाहते हैं? इस प्रवचन सार की बात पर 80 नंबर की गाथा में क्या बताया, जो जिनेन्द्र भगवान को अरहंत को द्रव्य से गुण से और पर्याय से जाने उसको आत्मानुभूति होगी। वहां तो लिखा है मोह क्षय हो जाएगा, यानी उसको तो आत्मानुभूति होगी, ऐसा हम लेवे। तो यहाँ क्या कहते हैं, जिसने सर्वज्ञ की सत्ता का निर्णय किया है, यानी सर्वज्ञ है और उनके स्वरूप को भी जाना है, उसके जिन प्रतिमा के दर्शन से सम्यक दर्शन रूप फल होता है, दूसरे को नहीं। अन्य केवल जाके भगवान के सामने हाथ जोड़ के वापस आ जाए ऐसा उनके नहीं, उन सभी को नियम से अपने आत्मकल्याण रूप कार्य की सिद्धि नहीं होती। जो जीव अपने सत्य पुरुषार्थ से निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट करता है उसी को जिनबिंब दर्शन निमित्त कहा जाता है। जिन्होंने सर्वज्ञ का तो निश्चय किया नहीं किंतु मात्र कुल पद्धति से, संप्रदाय के आश्रय से या मिथ्या धर्म बुद्धि से दर्शन पूजनादि रूप प्रवृत्ति करते हैं, या पुरुषोत्तम नहीं चाहिए ना? और कितने तो मत पक्ष के अटक ग्राही बने थे, अन्य देव को नहीं मानते, मात्र जिन देवादि के सेवक बने हुए हैं उनके भी नियम से अपने आत्मकल्याण रूप कार्य की सिद्धि नहीं होती। यानी अभी देखो हमने तो ऐसा पढ़ा है, यही बात है, लेकिन ये मीठे शब्दों में बता रहे क्या, जिसने अरहंत को सही रूप से नहीं जाना है, केवल देखा देखी या कुल परंपरा से, या हमारे घर में सब लोग करते हैं तो हमको भी करना पड़ता है, इसलिए जाके भगवान के पैर छू के आए, तो कहते वह भी गुरोहित मिथ्या दृष्टि है, गुरोहित नहीं है, गुरोहित मिथ्या दृष्टि, यही बात इसमें लिखी है, देखना इसमें अभी तक बताया नहीं कहां से लिया, देखता हूं बता दो। सनावत से प्रकाशित हिंदी सत्ता स्वरूप पृष्ठ 61। क्योंकि दो तीन प्रश्न के बाद वो लिखा है, अभी देखो क्या कहते हैं फिर से, जिसने सर्वज्ञ की सत्ता का निर्णय किया है उसके जिन प्रतिमा के दर्शन से सम्यक दर्शन रूप फल होता है, दूसरों को नहीं, उन सभी को नियम से अपने आत्मकल्याण रूप कार्य की सिद्धि नहीं होती। यानी जो बिना जाने निर्णय किए जो नमस्कार करते उनको, जो जीव अपने सत्य पुरुषार्थ से निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट करता है उसी को जिन बिंब दर्शन निमित्त कहा जाता है। अब कहते हैं जिन्होंने सर्वज्ञ का तो निश्चय किया नहीं किंतु मात्र कुल पद्धति से, संप्रदाय के आश्रय से, या मिथ्या धर्म बुद्धि से। मिथ्या धर्म बुद्धि से यानी क्या, देखो हम एक जगह गए थे पूजन के लिए, पूजन थी उनके घर में, नया घर लिया था, वास्तु शांति जो होती है, उन्होंने वास्तु शांति बोल के पूजन किए थे, हमें भी बुलाया था, हम भी गए थे, तो फिर वो 1,00,000 नमोकार मंत्र जाप जपने का ऐसा उन्होंने संकल्प किया, कुछ 8-10 दिन होते हैं उसके अंदर जो कुछ है वो, तो 1,00,000 ऐसा करो ना, तुम 100 करो, तुम 100 करो, तुम 100 करो, एक दिन में कितने होंगे, 100 करेंगे तुम, 100 बार 108 माला जपने की हो, खाली नमो अर्घानो बोलना नहीं, घर में आए ऐसा वो जो पूरा गिने, तो अभी 10 जने हैं तो एक दिन का इतने हो गए, तो 10 दिन के कितने, इस तरह से हिसाब करना, फिर 1,00,000 हो जाए। तो ये मैं, हमने पूछा साहब ये सारा झंझट क्यों, बोलते हैं ये घर के शांति के लिए है, नमोकार मंत्र जपे तुम और शांति ये पत्थर ईंट को मिले, ये धर्म बुद्धि क्या कहा, देखो देखो देखो, मिथ्या धर्म बुद्धि से दर्शन पूजन आदि रूप प्रवृत्ति करते हैं। अभी ऐसे एक एक ने कितने किस्से हैं, अभी दूसरी बात क्या बोलते, कुल पद्धति से, यानी हमारे घर में ऐसे ही चलते आया है, नहीं साहब ऐसा मत करो, क्या नहीं करो, आप यहाँ चंदन चढ़ाते हो, आप यहाँ फूल चढ़ाते हो, बोलना मत, क्या हमारे बाप जादे के मूर्ख थे क्या, तू बड़ा सयाना आया बताने वाला, हमारे घर में ऐसा ही चलता है, ऐसे कुल परंपरा ऐसे टक गया, ये कुल परंपरा की बात सुननी है क्या, अपनी ने अन्य लोगों की बात है, एक पुजारी था बहुत मोटा था, हाँ तो क्या था, पहले के जमाने के पुजारी था ना, अभी भी धोती डाल के पूजन आदि करने के लिए, तो नीचे बैठ के पूजन करने जाओ तो क्या होता था कि उसकी धोती के पीछे का भाग होता है ना ऐसा, क्या बोलते आप लोग उसको, क्या क्या वो ऐसा डाल के काष्टा बोलते हैं हमारे यहाँ, काष्टा तो धोती का जो होता है, अच्छा पछेड़ी, पछेड़ी बराबर पिछला भाग पछेड़ी, वो छोड़ के बैठता था, तो उसका छोटा बच्चा था 8-10 साल का, वो भी रोज उधर बैठता था उसके साथ, इतने में क्या हो गया, तो मोटा था वो बेचारा मर गया। तो उसकी माता ने बोला कि बेटा अभी तेरे पिता तो नहीं अपने को खाने पीने के लाले पड़े, उससे अच्छा हाथ से तू ही पूजा कर। बिल्कुल करूंगा। तो दूसरे दिन वो भी बैठा तो वो भी निकाल के बैठा, तो उसको पूछा भैया ये क्यों कर रहे तू? अरे मेरे पिताजी ऐसा कर रहे थे, ये क्या हुआ? कूल पद्धति। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं अपने पास। फिर क्या होता है कि वो विषयांतर हो जाता है। और क्या कहा देखो, कुल पद्धति से संप्रदाय के आश्रय से, यानी हम हमारा संप्रदाय नहीं छोड़ेंगे। आपकी बात सत्य है बिल्कुल, हम क्या करें, हम अपनी बात नहीं छोड़ सकते, तो हमारे में ऐसा ही बताया। या मिथ्या धर्म बुद्धि से, इसकी भी बात बताएं। दर्शन पूजनादि, ये पूजन क्यों करना? अरे क्या करें साहब, हमारे घर में फला फला को कोड आया हुआ है, तो उसने सिद्ध चक्र विधान किया तो उसका नहीं उसके पति का कोड निकल गया। पूजन किसने किया? इसने, उसके पति को कोड सुधर गया, तो उसके कारण से अपन करना। ये सब कथाएं आती है अपने इसमें। तो कह रहे हैं मिथ्या धर्म बुद्धि से दर्शन पूजन आदि रूप प्रवृत्ति करते हैं, और कितने तो मत पक्ष के हटग्राही बने थे। हम अभी हम तो बिल्कुल जैन हैं, तो हम मत पक्ष छोड़ेंगे नहीं, अन्य देवों को नहीं मानते, सिर्फ 24 तीर्थंकर को ही नमस्कार करेंगे, यानी अपने जिनेन्द्र भगवान को ही नमस्कार। मात्र जिन देवादि के सेवक बने हुए हैं उनके भी नियम से अपने आत्मकल्याण रूप कार्य की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि वो किसी न किसी पक्ष में हठी बन के बैठे हैं। ये हठी शब्द से बहुत पुरानी याद आई हमको। ये हठ नहीं है, ये सत्य बात है। प्रश्न, यदि सर्वज्ञ की सत्ता का निश्चय हमसे नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये देव तो सच्चे देव हैं, उनकी पूजनादि करना व्यर्थ थोड़ी होता है। यदि किंचित मंद कषाय रूप परिणति होगी तो पुण्य बंद होगा, परंतु जिन मत में तो देव दर्शन से सम्यक दर्शन रूप फल होना बताया है, सो तो नियम से सर्वज्ञ की सत्ता के जानने से ही होगा, दूसरी तरह से नहीं। इसलिए जिन्हें सच्चा जैनी होना है उन्हें तो सतदेव, सदगुरु और सच्छात्र के आश्रय से सर्वज्ञ की सत्ता का तत्व निर्णय करना योग्य है, किंतु जो तत्व निर्णय तो नहीं करते और पूजा स्तोत्र दर्शन त्याग तप वैराग्य संयम संतोष आदि सभी कार्य करते हैं, उनके ये सभी कार्य झूठे हैं। इसलिए सत आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा गुरुओं का उपदेश और स्वानुभव के द्वारा तत्व निर्णय करना योग्य है। ये लास्ट सेंटेंस जो हम पढ़ा है वो कहाँ देखा था भाई, आपको याद है? समय सर, वहाँ देखो मैं निज वैभव से बताऊंगा, तो मेरे वैभव में क्या क्या है, ये चार बातें: सत आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा गुरुओं का उपदेश और स्वानुभव से मैं ये बता रहा हूं, और आप भी उसका अनुभव करके नक्की करना। ये कंडीशन डाली है, खाली हम बोलते इसलिए मानो मत। ये कहा था मुझे, चौथी होनी चाहिए, पांचवी मुझे याद नहीं, देख लो फिर पता लगेगा, मुझे पक्का याद नहीं। हाँ अभी भी देख लो, पांचवी होनी चाहिए। चलो ठीक, जो भी है। अभी यहाँ क्या बता रहे हैं, ये सनावत से प्रकाशित हिंदी सत्ता स्वरूप पृष्ठ 61 में है ये बात, ऐसा उन्होंने लिखा है, लेकिन ये तो अलग है। यह कहा, प्रश्न पूछ रहे हैं, यह कहा है कि मिथ्या दृष्टि देव च चार कारणों से प्रथम औक्षमिक सम्यक्व को प्राप्त होते हैं, उनमें एक जिन महिमा कारण बताया है, किंतु जिन बिंब दर्शन नहीं बताया, इसका कारण क्या है? जिन बिंब दर्शन का जिन महिमा दर्शन में समावेश हो जाता है, क्योंकि जिन बिंब के बिना जिन महिमा की सिद्धि नहीं होती। यानी शब्द अलग आ गए ना, एक जिन बिंब दर्शन जो है वो सम्यक्त्व का कारण है, और वो कहते हैं कि एक जगह ऐसा लिखा है कि औक्षमिक सम्यक्त्व प्राप्त होने में जिन महिमा ये कारण बताया। तो वही है, एक ऐसा क्यों? तो फिर कह रहे हैं कि जिन बिंब दर्शन जब कहते हैं उसका जिन महिमा दर्शन में समावेश हो गया, यानी इट इज इन पार्ट ऑफ इट। अब प्रश्न, स्वर्गावतरण, जन्माभिषेक और दीक्षा कल्याण रूप जिन महिमा जिन बिंब के बिना की जाती है, इसलिए क्या जिन महिमा दर्शन में जिन बिंब दर्शन का अविनाभावित्व नहीं पाया आया? ये क्या कहते हैं? देखो, स्वर्गावतरण यानी स्वर्ग में अवतरण यानी जन्म लेना, जन्माभिषेक आप में नहीं है क्या? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, तो पढ़ो क्या नहीं पढ़ो? हाँ, तो कहते हैं स्वर्गावतरण, जन्माभिषेक, जन दीक्षा कल्याण रूप जिन महिमा जिन बिंब के बिना की जाती है। अब ये सारी दीक्षा कल्याण वगैरह जन्माभिषेक जो होते हैं कल्याणक में, वहां तो जिन बिंब होती नहीं, होता ही नहीं है, तो इसलिए क्या जिन महिमा दर्शन में जिन बिंब दर्शन का अविनाभावित्व यानी दोनों एक साथ होते हैं अविनाभावित्व नहीं आया, यानी उसमें आया कि नहीं, ऐसा पूछ रहे। तो उत्तर देते हैं, स्वर्गावतरण, जन्माभिषेक और दीक्षा कल्याण रूप जिन महिमा में भी भावी जिन बिंब का दर्शन होता है। दूसरी बात यह है कि इस महिमा में उत्पन्न होने वाले प्रथम सम्यक्त्व जिन बिंब दर्शन नैमित्तिक नहीं है, किंतु जिन गुण श्रवण नैमित्तिक है, अर्थात प्रथम सम्यक तो उत्पन्न होने में जिन गुण श्रवण निमित्त है। ये क्या है? इन्होंने अलग अलग प्रश्न उठा के उसको और थोड़ा सा मतलब समझाने का प्रयत्न किया। जाति स्मरण का देव वृद्धि दर्शन में समावेश क्यों नहीं होता? अपनी अनिमादिक वृद्धियों को देखकर जब यह विचार उत्पन्न होता है कि जिन भगवान के द्वारा प्ररूपित धर्मानुष्ठान से ये वृद्धियां उत्पन्न हुई है, तब प्रथम सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए जाति स्मरण निमित्त होता है, किंतु जिस समय सौधर्मादिक देवों की महावृद्धियों को देखकर यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि सम्यक दर्शन सहित संयम के फल से शुभ भाव से वह उत्पन्न हुई है और मैं सम्यक्त्व रहित द्रव्य संयम के फल से वाहनादिक नीच देवों में उत्पन्न हुआ हूं, यानी जो सम्यक्त्व की सहित वाले होगा उसको तो ऊपर की दशा मिलेगी और बाकी देव भले हुआ लेकिन वाहन आदि निचली दशा वाले देव हुए। उस समय प्रथम सम्यक्त्व का ग्रहण देवर्धि दर्शन निमित्तक होता है। अच्छा, उन्होंने देवों की जो रिद्धियां हैं उसकी बात कही,
अन्य देवों की
रिद्धि देखकर, यानी पहले जो बताया कि अपनी रिद्धियां देखकर वहाँ, ये भी धर्मानुष्ठान के द्वारा जिनागम में जो बताया है धर्मानुष्ठान ने पांचवी गुणस्थान की हुई वैसे उसने की है, छठे सातवें की होगी, यानी सम्यक तो हुआ नहीं परंतु बाह्य शुभ भाव किया इसलिए उसको रिद्धि प्राप्त हुई, तब उसका विचार करता है।
अच्छा, देखो यहाँ नोट दिया है नारकियों में जाति स्मरण और वेदना रूप कारणों में भी यही नियम लगा लेना। प्रश्न अभी आगे का, आनंद प्राणत आरण और अच्युत, ये कौन से स्वर्गों के कौन से स्वर्ग है नंबर? भाई आप जानते हैं? आप नहीं जानते हैं? मंदा तू जानती है? बोलो। 13, 14, 15, 16। 13 यानी कौन? आनंद। 14 प्राण, आरण 15 और अच्युत 16। इन चार स्वर्गों के मिथ्या दृष्टि देवों के प्रथमोक्षम सम्यक्त्व में देवर्धि दर्शन कारण क्यों नहीं बतलाया? इन चार स्वर्गों में महारिद्धि वाले ऊपर के देवों का आगमन नहीं होता, इसलिए वहां प्रथम सम्यक्त की उत्पत्ति का कारण महारिद्धि दर्शन कारण नहीं बतलाया। इन्हीं स्वर्गों में स्थित देवों की महारिद्धि का दर्शन प्रथम सम्यक्त की उत्पत्ति में कारण नहीं होता, क्योंकि बारंबार इन रिद्धियों के देखने से विस्मय नहीं होता। पुनश्च इस स्वर्गों में शुक्ल लेशा के सद्भाव के कारण महारिद्धि के दर्शन से कोई संकलेश भाव उत्पन्न नहीं होता। दो कारण बताए, बार बार देखी जाती है चीज उसको कोई उसका महत्व नहीं लगता है, और दूसरी क्या है? शुक्ल लेशा है, मंद परिणाम है, इसलिए भी ऐसे आश्चर्य होने जैसे कोई संकलेश भाव नहीं होते उनके। नवग्रह वेग तथा ऊपर के देवों का आगमन नहीं होता है, इसलिए वहां महारुद्धि दर्शन कारण नहीं है, तथा ये विमानवासी देव अष्टानिक पर्व महोत्सव देखने के लिए नंदीश्वरादि द्वीपों में नहीं जाते, इसलिए वहां जिन महिमा दर्शन भी कारण नहीं है। वे अवधि ज्ञान के बल से जिन महिमा को देखते हैं तो भी इन देवों के राग की न्यूनता अर्थात मंदराग होने से जिन महिमा दर्शन से उनको विस्मय उत्पन्न नहीं होता। ये धवला पुस्तक 6, 432 से यहाँ जो हमने पहले देखा, यहाँ यह प्रश्न है कि मिथ्या देव दृष्टि देव चार कारणों से प्रथम औषमिक समय वहां से लेकर यहाँ तक धवला पुस्तक 6 का उन्होंने कोटेशन दिया है, क्योंकि चार पेजेस है ना, उसमें से सिलेक्टेड कुछ लिया है उन्होंने। 432 से 436 बात बता रहे हैं। अभी हम क्या देख रहे थे अभी तक? निर्देश, स्वामित्व और साधन वाली बात चल रही है। ये साधन क्या क्या होते हैं सम्यक दर्शन में? तो अभी कहते हैं अधिकरण। सम्यक दर्शन का अंतरंग आधार आत्मा है और बाह्य आधार त्रसनाली है। लोकाकाश के मध्य में 14 राजु लंबे और 1 राजु चौड़े स्थान को त्रसनाली कहते हैं।
ये नाड़ी भी कहते हैं, नाली भी कहते हैं। त्रसनाली और त्रसनाली दोनों ही शब्द, दोनों ही बराबर।
ये इन्होंने ये जो बात बताई ना, सुनना हो। सम्यक दर्शन का आधार आत्मा है और बाह्य में आधार त्रसनाली है, तो त्रसनाली के बाहर किसी को सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं? हाँ, रीजन पता नहीं, खाली नाना बोल दिया। हाँ दिव्या बहन, दिव्या बहन आप बता पाएंगे? नहीं, सुशीला बेन, त्रस नाली के बाहर क्या बताया? हाँ, तो इतने हमारे यहाँ जो मनुष्य लोक है उसके बाहर जितने द्वीप समुद्र है वहां तो कोई सम्यक दृष्टि होगा कि नहीं? हाँ नलिन भाई, जो मनुष्य लोक है 2.5 द्वीप उसके बाहर असंख्यात द्वीप समुद्र है, तो उसमें सम्यक दृष्टि होंगे कि नहीं? क्यों क्यों होंगे? मतलब जो बता है वही तो हम बता रहे, वो क्यों है इसने उत्तर भी दे दिया भाई। बोलो जय भाई, वो तृष्णा लिए एक राजु में है। अपने को लगता है इतना असंख्यात जीव समुद्र है, अरे वो एक राजू के अंदर ही अंदर है, त्रस नाली में ही वो सारे हैं, उसके बाहर तो एक केंद्रीय जीव ही है बस। क्या कहा देखो, लोकाकाश के मध्य में 14 राजू लंबे और 1 राजू चौड़े स्थान को त्रस नाली कहते हैं। स्थिति, तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन की जगन्य से जगन्य स्थिति अंतर्मूर्त की है। औपचमिक सम्यक दर्शन की उत्कृष्ट भी उत्कृष्ट स्थिति भी अंतर्मूर्त की है। क्षयाक्षमिक सम्यक दर्शन की उत्कृष्ट स्थिति 66 सागर की है। और क्षायिक सम्यक तो की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति में कितना अंतर होगा? हाँ सुशीला बहन, क्षायिक सम्यक तो की जघन्य काल कितना और उत्कृष्ट काल कितना? आपका कहना है कोई अंतर नहीं है, क्योंकि क्षायिक समय तो एक बार प्रकट हुआ तो उससे जीव गिरता ही नहीं है, तो वो तो प्रकट हुआ अनंत काल तक चलना है, तो उसमें कोई अंतर नहीं जघन्य और उत्कृष्ट में। क्या क्या लिखते हैं देखेंगे। और क्षायिक सम्यक दर्शन की सादी अनंत है तथा संसार में रहने की अपेक्षा उसकी उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर तथा अंतर्मूर्त सहित 8 वर्ष कम 2 कोड़ी पूर्व है। ये क्या बात बताना चाहते, समझ में आया? देखो किसी जीव ने सम्यक्त्व की प्राप्ति की, कौन से क्षायिक सम्यक्त्व की, क्या कहा देखो फिर से, संसार में रहने की अपेक्षा से, संसार में यानी अभी हम जो रह रहे हो, उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर तथा नहीं है और अंतर्मूर्त सहित 8 वर्ष कम 2 करोड़ पूर्व है। अभी क्या है, अभी किसी की 1 करोड़ पूर्व की आयु है, उसने 8वें साल के बाद सम्यक्त्व की प्राप्ति की और पूरे 1 करोड़ पूर्व तक वो क्षायिक सम्यक भी रहा, क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति की और वो पूरा 1 करोड़ तक, 1 करोड़ पूर्व तक मनुष्य गति में रहते हुए उसी में रहा, मुनि हुआ जो भी हुआ फिर भी वो क्षायिक सम्यक ही था वहां से मरकर, क्योंकि 33 सागर में तो मुनि ही जाएंगे, तो वहां गए, वहां से यहां आए, फिर मनुष्य का 1 करोड़ पूर्व की आयु प्राप्त की और वो पूरे 1 करोड़ पूर्व तक मान लो जो कोई भूमिका में रहते 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 आखिर के 1 अंतर मुहूर्त में पूरी प्रक्रिया करते हुए सम्यक मतलब मुनि दशा ली, ये लिया वो लिया जो कुछ होगा आखिर के मतलब
कहने की क्या जरूरत
है, मतलब आयु पूरे होने के पहले वो मतलब आखिर में उसने मोक्ष प्राप्त किया।
अपन अंतर्मूर्ति वो तो क्षायिक ही रहा ना, उसकी कुछ पूर्व कोटि तक क्षायिक रहा,
उसे चलो ऐसा ले लो, तो हमने कब मोक्ष किया वो बात बता रहा हूँ, आखिर में क्या एक ही है ना,
माने ये अंतर्मूर्त भी कम है और 8 वर्ष भी कम है, ये दोनों माइनस।
हाँ
ये अंतर्मूर्त और 8 वर्ष जो है वो पहले भोग का ही
लेकिन
वही तो पहले पहले एक पूर्व कोटि फिर 33 सागर में और फिर आकर एक पूर्व कोटि, पहला वाला पूर्व कोटि में से 8 साल कम कर
दीजिए मैक्सिमम दिखा है, अभी मिनिमम कितना हो सकता है
इसका
शायद ना, मिनिमम इन केस संसार अवस्था में
उसी भाव
में उसी भाव में जाएगा तो ये तो मैक्सिमम दिखा है, बाद में तो रहेगा वो बात अलग है,
अंतर्मूर्त होगा ना
अंतर्मूर्त।
ये त्रणे सम्यक दर्शन लिखा है यहाँ पर, ऊपर क्या लिखा तीनों ही प्रकार के समय दर्शन का जगत निकाल। वैसे तो ऐसा जगत निकाल शायद गठित होता ही नहीं, परंतु संसार अवस्था की बात अगर करेंगे तो हो सकता है।
लेकिन संसार साहित्य में दर्शन किया और बाकी भी पढ़ते के
सब मिलकर अंतर्भूत होता है। यानी मुनि थे, शायद प्राप्त किया, शबक श्रेणी चढ़ गए, अंतर्भूत में मोक्ष चले गए। तभी गणित होता, नहीं तो त्रणी प्रकार न समय दर्शन ये जो वाक्य लिखा है वो गठित नहीं होता। अभी आपने कुछ इसके बारे में बोला कि हमें नहीं, यहाँ तीनों समय दर्शन लिखा है ना,
लिखा है
जगन।
अभी मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, हमको ऐसा लगता है कि देखो 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 ये छठा गुणस्थान का काल भी अंतर्मुहूर्त, सातवें का भी काल अंतर्मुहूर्त, आठवें का भी अंतर्मुहूर्त, ये सब करते 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 वो तेरवा भी प्राप्त किया, वो भी कुछ अंतर्मुहूर्तों में खत्म हो गया और वो मोक्ष चला गया। तो बात ऐसी है, ये 48 मिनट में एक समय कम जो है वो उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। अब जघन्य कौन सा है कि जघन्य युक्ता संख्यात प्लस एक समय, ये उसका जघन्य में से जघन्य, फिर और एक समय अधिक ऐसे करते जाओ, दूसरा जघन्य युक्ता संख्यात पूरा करो तब वह दूसरा, मतलब उसकी दूसरी ये चालू होगी अंतर्मुहूर्त, सॉरी मुझे दूसरा बताना है कि वो दूसरी आवली चालू हुई, और ऐसे करते करते इसके बीच में असंख्यात अंतर्मुहूर्त गए। हम ऐसा मानते हैं कि ये अंतर्मुहूर्त, यानी वैसे देखा जाए तो जो छठे का काल है उससे आधा काल सातवें का है, सातवें से छोटा काल आठवें का है, आठवें से छोटा काल नौवें का है, नौवें से छोटा काल दसवें का है, और दसवें से छोटा काल बारहवें का है, और ये सब एक अंतर्मुहूर्त में हो जाता है।
लेकिन वो संख्या दावली होगी कि असंख्या दावली होगी, क्योंकि एक
संख्या दावली होगी,
संख्या थी
ना? बात ऐसी है कि ये हमें ऐसा लगता है कि अंतर्मुहूर्त, क्योंकि एक दो दस पचास हजार लाख करोड़ भी तुम डालो फिर भी वो अंतर्मुहूर्त में ही आएंगे। इसलिए यहाँ पर क्या बताया, तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन की जघन्य से जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त की है, और बाकी तो अभी हमने देखा। अब विधान जो आखिर का पॉइंट है उसको देखते हुए बढ़ेंगे। सम्यक दर्शन एक तरह अथवा स्वपर्याय की योग्यता अनुसार तीन प्रकार का है, यानी सम्यक दर्शन एक ही एक जैसा ही है, लेकिन उसको स्वपर्याय की अपेक्षा से देखा जाए तो तीन प्रकार के, कौन से, औपशमिक, शावशमिक, शायिक, और तथा और क्या बताते, आज्ञा, ये सम्यक्त्व के नाम है, आज्ञा सम्यक्त्व, मार्ग सम्यक्त्व, इस तरह समझना, आज्ञा मार्ग बीज उपदेश सूत्र संक्षेप विस्तार अर्थ अवगाढ़ और परम अवगाढ़, इस तरह 10 भेद रूप है। ये सम्यक्त्व के 10 भेद का भी वर्णन बताते हैं। अब कह रहे और भी अन्य अमुख्य उपाय, वो कल देखेंगे, ये 6 तो याद हो गए ना सबको, अभी बाकी के कल याद करके आना। जावानी के ज्ञान तय सूझे लो कालो सोवाणी मत नलिन में।
नमो नम सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वर्ध्यायाण नमो लोहे सोसा नमो अरिंदाण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वर्ध्यायाण नमो लोहे सोसा नमो अरिंदाण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वर्ध्यायाण नमो लोहे सोसा नमो अरिंदाण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वर्ध्यायाण नमो लोहे सोसा नमो अरिंदाण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वर्ध्यायाण नमो सिद्धाय नमो आयुर्ण नमो वचाय 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 नमो सिद
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी
कौन सा है।